व्यवस्था विवरण अध्याय 3। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रोई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूं। और जैसे तूने हिशबोन के निवासी एमोरियों का राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहां तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। इस रीति अर्गेब का सारा देश जो बाशान में ओ के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वो हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। व्यवस्था विवरण 3:1-5। दूसरे शब्दों में उन्होंने बाशान के मार्ग पर 7 शहरपना वाले नगर अपने अधिकार में कर लिए थे। उन लोगों के भय का मुख्य कारण था बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए नगर और भीमकाय नगरवासी। भय के कारण उनका विश्वास डगमगा गया था, परंतु मूसा कहता है, परमेश्वर के सामने वे कुछ नहीं है, तुम्हें उन ऊंची दीवारों की चिंता नहीं करना है, तुम्हें उन दैत्यों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर ने तुम्हें कह दिया है कि वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे विरोधियों को खदेड़ेगा। तुम उन भयवो बातों से मत डरो और प्रवेश करो, बढ़ चलो और परमेश्वर को अपना काम करने का अवसर प्रदान करो। अतः वो विशेष करके उन्हें याद दिलाता है कि वे इन दैत्यों के क्षेत्र में ऊंची दीवारों वाले नगर जीत चुके हैं। मूसा के प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य था कि उनके विश्वास को परमेश्वर में दृढ़ किया जाए। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वो तो अमोनियों के राबा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। व्यवस्था विवरण 3:11। राजा ओग भी एक दैत्य था। उसकी चारपाई 13 फुट लंबी तथा 6 फुट चौड़ी थी। वो दैत्यों के क्षेत्र में अंतिम राजा था। परमेश्वर ने उसे इसराइल के वंशजों के हाथ में कर दिया। वो क्षेत्र रूबिन और गाद कुलों में बांट दिया गया। इसके उत्तर का क्षेत्र मनशे को दे दिया गया था, जो हर्मोन पर्वत तक था। गोलान की ऊंचाइयों का पूरा क्षेत्र उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। इसी कारण वो पद 21 उनके लिए दोहराता है। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसे ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। व्यवस्था विवरण 3:21। तुम देख चुके हो परमेश्वर क्या कर सकता है, इसलिए हिम्मत मत हारो, बड़े चलो, परमेश्वर इन राजाओं को भी संभाल लेगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनोन को भी देखने पाऊं। पद 22 से 25। ओह मूसा 120 वर्ष की आयु में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हे प्रभु मुझे पार जाने दे, मैंने तेरे पराक्रम के कर्म देख लिए हैं कि तूने जो काम किए वे अन्य कोई देवता नहीं कर सकता है। तूने हमारे बैरियों का सफाया कर दिया है। हे प्रभु मैं उस देश को देखने के लिए ललायित हूं, मैं इस उत्तम पहाड़ और लेबनोन को भी देखने के लिए तरस रहा हूं। प्रभु तू मुझे वहां जाने नहीं देगा क्या? आपको ध्यान होगा जब इसराइल के वंशजों को जंगल में पानी की आवश्यकता पड़ी और वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, ये लोग तो मेरी जान के पीछे पड़े हैं, इन्हें पानी चाहिए। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो जाकर चट्टान को आज्ञा दे और पानी निकल आएगा। पहली बार तो परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान को मार, परंतु दूसरी बार चट्टान को आज्ञा देने के लिए कहा था। मूसा अपने लोगों से क्रोधित तो था, अतः उसने परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलकर कहा, क्या मैं फिर से चट्टान को मारूं कि तुम्हें पानी मिले? और उसने जाकर उस चट्टान पर लाठी मार दी। परमेश्वर ने कहा, मूसा यहां आ मेरे बेटे, तूने गड़बड़ कर दी, तूने इन लोगों के सामने मेरे रूप को ठीक से नहीं रखा। मूसा इसराइल के वंशजों में परमेश्वर का रूप था। परमेश्वर तो उनसे क्रोधित नहीं था, परंतु मूसा था, और उसका क्रोध करना परमेश्वर का उचित रूप प्रदर्शन नहीं था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुझसे बहुत गंभीर भूल हो गई है, इस कारण तू प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। परमेश्वर इन लोगों के मन में आज्ञा पालन और उसके उचित प्रतिनिधि होने के महत्व की मोहर लगा देना चाहता था कि वे संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो, अर्थात आपको इस संसार में मसीह का रूप प्रदर्शित करना है। अब एक प्रश्न ये है कि क्या हम उसका प्रतिनिधित्व उचित रूप से कर रहे हैं? हमें देखकर संसार यीशु के बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर के बारे में वे क्या सोचते हैं? क्या वे जान पाते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है? क्या वे समझ सकते हैं कि परमेश्वर सुधि लेता है? मैं परमेश्वर की कैसे छवि बना रहा हूं? परमेश्वर का यथोचित प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। परमेश्वर बल देते हुए यही कहना चाहता है कि हम जान ले कि हम उसके प्रतिनिधि हैं और उसे संसार में विश्वास योग्यता से तथा सच्चाई में प्रस्तुत करें। मूसा यहां चूक गया था, उसने परमेश्वर का गलत प्रतिनिधित्व कर दिया था। परमेश्वर क्रोधित नहीं था, परंतु मूसा को देखकर प्रजा ने सोचा कि परमेश्वर क्रोधित है, अतः परमेश्वर ने उसे दंड दिया कि वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। मूसा, क्योंकि तू इन लोगों के सामने मेरी छवि को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाया है, इसलिए तू प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। मूसा ने अपने बैरियों पर इसराइल की विजय को देखा था। वो ये भी देख रहा था कि प्रतिज्ञा के देश में अब प्रवेश का समय आ गया है, अतः वो उत्तेजित हो उठा, मैं तरस रहा हूं, मुझे इस देश में जाने दे कि यर्दन पार करके उस उत्तम देश को, नदियों को, घाटियों को और जो कुछ वहां है उसे देखूं। प्रभु मैं उस देश को देखना चाहता हूं, मुझे उस देश में प्रवेश करने दे प्रभु। मैं देखना चाहता हूं कि तू किस प्रकार वहां बैरियों का नाश करेगा। मैं वहां के लोगों को देखना चाहता हूं। परंतु यहोवा ने मूसा से कहा, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। व्यवस्था विवरण 3:26। मूसा, अब इस विषय में मुझसे बातें नहीं कर, तो नहीं जाएगा। यहां देखिए कि परमेश्वर हमेशा ही हां नहीं कहता है। मूसा को उसने प्रार्थना का उत्तर अवश्य दिया, परंतु नहीं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हमेशा देता है, परंतु वो कभी हां होता है, कभी ना होता है। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो इसराइल की प्रजा को आज्ञा पालन का महत्व सिखा दे। इस प्रकार मूसा की कहानी सदा के लिए माताओं के मुंह में थी कि वे आने वाले समय में अपने बच्चों को गोद में बैठाकर उसे सुनाए कि मूसा परमेश्वर का एक प्रतिनिधि या जिसे शिशु अवस्था से ही परमेश्वर ने संभाला था, उसे मिस्र की राजकुमारी ने पानी में से निकाला था, उसके माता पिता ने उसे एक टोकरी में रखकर वहां छोड़ दिया था, क्योंकि मिस्र का राजा फिरौन इब्री लड़कों को पैदा होते ही मरवा देता था। उसका लालन पालन राजमहल में हुआ था, परंतु बड़े होने पर उसने राजसी टाट बाट और पाप के वातावरण को त्याग कर परमेश्वर के लोगों के साथ हो गया। परमेश्वर ने उसे चुन लिया और उसके प्रतिनिधित्व में मिस्र को अपना सामर्थ दिखाया तथा उनका नाश किया। परमेश्वर ने उन पर अनेक विपत्तियां डाली। तब मूसा की अगुवाई में परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश तक लाया। मार्ग में उसने लाल सागर को दो भागों में बांट दिया तथा चट्टान से पानी निकाला, परंतु परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा के देश में जाने नहीं दिया। तब वे अचंभित होकर पूछे, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के रूप को इसराइल के वंशजों में गलत दिखा दिया। परमेश्वर क्रोधित नहीं था, परंतु वो क्रोधित प्रतीत हुआ। चट्टान से पानी निकालने के स्थान पर, जिसका नाम है मारा अर्थात संघर्ष से प्राप्त जल। इस प्रकार ये सबक इसराइल के वंशजों के मन में गहराई से बैठ गया कि परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे महत्वपूर्ण है। इसराइलियों के कारण परमेश्वर को अपने सेवक की मनोकामना पूर्ति से इनकार करना पड़ा। देख, इसके बारे में अब और बात ना कर, मैं तुझे उत्तर दे चुका हूं। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। व्यवस्था विवरण 3:28-29। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू वहां तो नहीं जा सकता, परंतु मैं तुझे उस देश का दृश्य अवश्य देखने दूंगा। पिसगा पर्वत पर जा और देख, इसके बाद तू जा और यहोशू को उत्तरदायित्व सौंप दे, उसे प्रोत्साहित कर और डाडस बांध, क्योंकि अब से आगे वही इनकी अगुवाई करेगा।